दोहरा सकते हैं चाहे तो, जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर है, मानो वह अमृत के समुद्र में तैर रहा है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। तात्पर्य इस प्रकार से, वृत्रासुर ने पहले प्रार्थना की थी 6:11-25 में, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। उसमें कह रहे हैं वृत्रासुर, यह प्रार्थना कर रहे हैं पिछले अध्याय के अंदर, मैं तो ब्रह्मलोक स्वर्गलोक यहां तक कि ध्रुवलोक के भी सुख की कामना नहीं करता, इस पृथ्वी या अधलोकों की तो बात ही नहीं, मैं तो भगवान के धाम को जाना चाहता हूं। यही शुद्ध भक्त का संकल्प है। शुद्ध भक्त इस संसार के उच्च पदों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होता, वह तो श्री भगवान के संगति में उसी प्रकार रहना चाहता है जिस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी, गोपियां कृष्ण के पिता तथा माता अर्थात नंद माता तथा यशोदा, कृष्ण के सखा तथा उनके दास रहते थे। वह वृंदावन के कृष्णमय सुंदरता के साथ अपना सानिध्य चाहता है। श्री कृष्ण के भक्त की यही परम इच्छाएं हैं। भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की कामना करते हो, किंतु श्री कृष्ण के भक्त कभी ऐसी इच्छा नहीं रखते। वे ते गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं, जहां श्री कृष्ण की लीलाओं को देख सकें। कोई भी सांसारिक सुख गड्ढे में भरे हुए जल के समान है, किंतु वैकुंठ लोक में जो आत्मसुख प्राप्त होता है वह अमृत के समुद्र के समान है, जिसमें भक्त तैरना चाहता है। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, और सभी भक्तों का आशीर्वाद लेंगे और वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए इस श्लोक पे, हालांकि चर्चा करना बहुत मुश्किल है और बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है ये, एटलीस्ट मेरी किसी रियलाइजेशन के बियॉन्ड है अनुरोध, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी जो इस परपोर्ट में बोल रहे हैं, तो कई दिनों बाद हम जन्माष्टमी के बाद अब इस प्रसंग को दोबारा मिल रहे हैं। तो प्रभुपाद जो प्रसंग है कि वृत्रासुर और इंद्र के बीच में युद्ध चल रहा है, और वृत्रासुर बीच बीच में उनको प्रवचन देते हैं, उत्साहित करते हैं युद्ध करने के लिए, और जो इंद्र के वच से वृत्रासुर का एक हाथ उन्होंने काट दिया है, लेकिन वृत्रासुर ने जो है इंद्र पे आक्रमण किया और इंद्र के हाथ से जो है वज्र छूट गया है अभी। तो इंद्र बहुत हतोत्साहित होते हैं, वृत्रासुर का उत्साह बढ़ाते हैं, और फिर जब वृत्रासुर के द्वारा भगवान का सा गुणगान सुनते हैं इंद्र, तो उनके मन में वृत्रासुर के लिए वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति या असुर तो बहुत दूर की बात है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और फिर ये और इंद्र को भी जो है उनको कोई रुचि नहीं रहती ज्यादा युद्ध करने के अंदर, उनकी इच्छा होती है कि और सुने वृत्रासुर से प्रसंग, और जो है राजा इंद्र की प्रशंसा करते हैं और फिर पुनः वज्र को हाथ में उठा लेते हैं, और जो है वृत्रासुर से इस प्रकार बोलते हैं। और पिछले 2-3 श्लोकों के अंदर आपने देखोगे कि इंद्र जो है वृत्रासुर का गुणगान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, मैं देखता हूं कि भयानक स्थिति में अहो दानव सिद्धोसि यस्य ते मतिरीदृशि, कि भयानक स्थिति में होते हुए भी अपने विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम श्री भगवान के सिद्ध भक्त और जन जन के मित्र हो। तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है, और इस मुक्ति के कारण तुमने आसुरी भाव का परित्याग करके महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। तो इंद्र इस प्रकार से बोलते हैं, और कल के श्लोक में इस प्रकार से आया था कि हे वृत्रासुर, असुर तो सामान्यतः रजोगुणी होते हैं, अतः यह महान आश्चर्य ही कहा जाएगा कि असुर होके भी तुमने भक्त भाव ग्रहण करके अपने मन को श्री भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया है, जो सदैव शुद्ध सत्व में स्थिर रहते हैं। और आज का श्लोक इस प्रकार से है, जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर है, मानो वह अमृत के समुद्र में तैर रहा है। तो जो भक्त भक्ति में स्थिर है, तो वो किसके भक्ति रसामृत सिंधु के अमृत में जो है भक्ति के रस के अमृत के सिंधु में तैर रहे हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। अभी कोई बोले इस गिलास के अंदर आप जो है स्नान कीजिए या तैरिए, तो ऐसे शुद्ध भक्तों को इतने छोटे जल से कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये क्या अर्थ है, प्रभुपाद इसके अंत में बता रहे हैं तात्पर्य के, कोई भी सांसारिक सुख गड्ढे में भरे हुए जल के समान है, किंतु वैकुंठ लोक में जो आत्म सुख प्राप्त होता है वह अमृत के समुद्र के समान है जिसमें भक्त तैरना चाहता है। तो इस श्लोक में तीन मुख्य पॉइंट श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, और इस तात्पर्य से निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की यूनिक पोजिशन स्थित पता लगती है कि प्रभुपाद जी वास्तविकता में किस स्तर के भक्त हैं। तो जो सबसे पहले पॉइंट तो प्रभुपाद सबसे अंत में बता रहे हैं वो पॉइंट इस प्रकार से है कि संसार के जो सुख हैं, जो इंद्रित्य के सुख हैं, वो गड्ढों में भरे हुए जल के समान है, अर्थात बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही नगण्य हैं। और इंद्र जो प्रभुपाद वृत्रासुर की प्रार्थना कह रहे हैं, न नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम, कि ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक यहां तक कि ध्रुव लोक के सुख की भी कामना नहीं करते। ध्रुव लोक तो एक प्रकार का वैकुंठ लोक ही है, तो वृत्रासुर उसकी भी कामना नहीं करते। इस पृथ्वी अधोलोक की तो बात ही छोड़िए, ऐसे करके कि पृथ्वी के सुख के अधोलोक की वृत्रासुर कामना करते हैं, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं वो है शुद्ध भक्त का संकल्प। एक शुद्ध भक्त की क्या संकल्प होता है? तो वृत्रासुर कह रहे हैं, मैं केवल भगवान के धाम जाना चाहता हूं। तो ये होता है एक जो है शुद्ध भक्त, एक श्री कृष्ण एक भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसकी इच्छा यही रहती है कि इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड से निकल करके वह कहां पे जाए? केवल भगवान के सानिध्य के अंदर। और बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रभुपाद ने ऐसा तात्पर्य लिखा, बहुत ही प्रभुपाद इसके अंदर कृष्ण के भक्तों के विशेष बार बता रहे हैं, और वो है कि वह तो श्री भगवान की संगति में उसी प्रकार रहना चाहता है। किस प्रकार रहना चाहता है? जिस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी, गोपियां, कृष्ण के पिता तथा माता, कृष्ण के सखा तथा उनके दास रहते हैं। वह वृंदावन, इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं, अ डिवोटी वॉन्ट्स टू स्टे इन वृंदावन, कृष्णास ब्यूटी ऑफ वृंदावन एटमोस्फेयर, नो कृष्णास एटमोस्फेयर ऑफ वृंदावन ब्यूटी, राइट्स वेरी नाइस फ्रेज, कि डिवोटी वॉन्ट्स टू लिव इन कृष्णास एटमोस्फेयर ऑफ वृंदावन, कृष्णास एटमोस्फेयर ऑफ वृंदावन ब्यूटी, लाइक दैट। तो और हिंदी में तो लिखा है कि वह वृंदावन के कृष्णमय सुंदरता के साथ अपना सानिध्य चाहता है। श्री कृष्ण के भक्त यही परम इच्छाएं हैं। भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की कामना करते हो, किंतु श्री कृष्ण के भक्त कभी ऐसी इच्छा नहीं करते। बड़े आश्चर्य की बात है कि वृत्रासुर किनके भक्त हैं? भगवान शंकरशन के, वो कृष्ण के भक्त नहीं है ऐसे देखा जाए। और वृत्रासुर ऐसा नहीं कि वृंदावन जाएंगे या जाना चाहते हैं, वो तो भगवान शंकरशन के धाम में ही जाना चाहते हैं। वो निश्चित रूप से वैकुंठ लोक है, शंकरशन भगवान गोपियों के साथ राधा रानी के साथ जो है कोई लीला नहीं करते इस प्रकार से। लेकिन प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि कृष्ण का भक्त जो है वो वृंदावन में जाना चाहता है, उसी प्रकार जिस प्रकार राधा रानी यशोदा नंद महाराज जो है वो रहना चाहते हैं। तो ये विशेष लक्षण है भगवान कृष्ण के भक्त का, इसे करके। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे, जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसकी इच्छा होती है केवल भगवान के साथ ही रहने की। और चैतन्य महाप्रभु जो है अपने शिक्षाष्टकम के आठवें श्लोक में बताते हैं, आशील शिवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो जो भगवान का भक्त होता है वो केवल भगवान चाहे उसकी खुशी इसी में है कि भगवान जहां पे खुशी मिल सकती है। तो चैतन्य और इसके लिए दो उदाहरण विशेषता चैतन्य चरितामृत में दिए गए हैं, जब ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम कोट करते हैं। एक उदाहरण तो बहुत ही प्रसिद्ध है जो हम सब सुनते हैं कि चातक जो पक्षी होता है, चातक बर्ड, चातक पक्षी, वो केवल जो है बादलों का स्वाति नक्षत्र से जो जल आता है वही जल पीता है। वो बिल्कुल आंख लगाए जो है वो बादलों की ओर देखते रहते हैं। फीडबैक नहीं है मोबाइल फोन, हरे कृष्ण। तो चातक पक्षी जो होते हैं वो बादलों के, वो कभी भी धरती में पड़े हुए या जो इस वातावरण से दूषित जल है उसको कभी नहीं पीते। हालांकि यहां पे बहुत सारे समुद्र होंगे, सरोवर होंगे, नदियां होंगी, तालाब होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन जो चातक पक्षी है वो केवल जो है बादलों की ओर देखते रहते हैं और केवल वही जल पीते हैं। चाहे हो सकता है कई बार बादलों की ओर देखते हुए जो है बादल बहुत समय तक बरसे नहीं, और स्वाति जो चातक पक्षी है चाहे वो प्यासे रहें लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो कभी भी जो है पृथ्वी पे पड़े हुए जल को नहीं पीते, वो केवल शुद्ध जल को पीना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चातक पक्षी जब वो बादलों के स्वाति नक्षत्र के जल का प्रयास वो करते हैं कि राह देख रहे होते हैं, तो बहुत बारी आसमान में बिजली कड़कती है और उनके सर पे गिरती है प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी जो है चातक पक्षी कभी भी अपने दृढ़ निश्चय के अंदर जो है वो मतलब कम नहीं होते। इस प्रकार से उनको केवल जो है उन बादलों के स्वाति नक्षत्र जल ही पीना है और कोई जल नहीं पीते। तो ये उसी प्रकार से भक्ति डिटर्मिनेशन होती है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे सुख में चाहे दुख में, संपदे विपदे इस प्रकार से, और कि चाहे कृष्ण जो है उनका आलिंगन करें अथवा उनसे दूर जाएं, कृष्ण दर्शन दे उन्हें ना दे, उन्हें अपनी भक्ति का परिणाम मिले चाहे ना मिले, लेकिन भक्त जो है बिल्कुल अनकंडीशनली अहेतु के जो है भगवान के शरणागत होता है। और एक विशेष कथा बताई गई है, क्योंकि यहां वृंदावन की कथा है तो राधा रानी के प्रेम के बारे में एक भौतिक कथा ही है वैसे तो, लेकिन ये भौतिक तो पता नहीं, लेकिन ये एक वेश्या की कथा है जिसका नाम था लक्ष्य हीरा, और ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं। आदित्य पुराण, मार्कंडेय पुराण और पद्म पुराण, इन तीनों में कथा आती है जिसके अंदर ये श्लोक भी इस प्रकार से है। कुष्ठि विप्र रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैला वैश्य सेवा। तो एक पतिव्रता स्त्री होती है, उनके बारे में कथा है कि इन स्त्री का विवाह होता है और उनके पति को कुष्ठ रोग होता है,
लेप्रोसी जो है,
उनको कुष्ठ रोग होता है। तो ये जो पतिव्रता स्त्री है, कोई भी स्त्री मतलब अब कुष्ठ रोग है तो निश्चित रूप से कोई स्त्री छोड़े सोच सकती है कि ऐसे पति की सेवा करने से क्या लाभ, लेकिन वो पतिव्रता स्त्री जो है बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने पति की सेवा करती है चाहे उन्हें कुष्ठ रोग ही होता है। और जब ऐसी सेवा करती हैं तो देखती हैं कि जो उनके पति हैं उनकी अपनी इस पत्नी में कोई खास रुचि नहीं है, हालांकि पत्नी बहुत सुंदर है लेकिन कोई खास रुचि नहीं है। तो अपने पति से पूछती हैं कि किस प्रकार से ऐसा लगता है कि आपकी मेरे में कोई रुचि नहीं है, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकती हूं, आप अपने हृदय की इच्छा मेरे को बता सकते हैं। तो बताते हैं कि इस गांव के अंदर, गांव के जस्ट बाहर, उस समय तो ट्रेडिशन इस वर्ष होता था, एक वेश्या है, उसका नाम है लक्ष्य हीरा। वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है, और मैं जो हूं उनके साथ संग करना चाहता हूं इस प्रकार से। तो अब सोचिए किसी पतिव्रता स्त्री के लिए एक बहुत ही मतलब विरोधास्पद स्थिति हो जाएगी इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि ना ये जो व्यक्ति हैं, ना वो ब्राह्मण थे, कुष्टि विप्रेर, एक तो ब्राह्मण थे तो कोई वैश्य संग करेगी नहीं, दूसरे अधिक धनी नहीं थे, और तीसरे कुष्ठ रोगी थे, है कि नहीं। तो और लक्ष्य हीरा जो है वो कभी जो है इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार ना करें। तो लेकिन ये पतिव्रता स्त्री क्या करती है, ये जाती है, हालांकि ये ब्राह्मणी है लेकिन फिर भी उस वेश्या के जाती है और उनकी दासी बनकर उनकी सेवा करती है। और लक्ष्य हीरा उन्हें कहते हैं कि आप क्यों सेवा कर रही हो, आप ब्राह्मणी हो, मुझ जैसे स्त्री की क्यों सेवा कर रही हो। लेकिन लक्ष्य वो जो स्त्री होती है वो कहती है कि नहीं नहीं मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। और इस प्रकार कई महीनों तक जो है वो उस लक्ष्य हीरा वेश्या की सेवा करती है। और इसके बाद वो वेश्या पूछती है जो लक्ष्य हीरा कि आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं लेकिन आप एक ब्राह्मणी हैं, मैं आपसे सेवा नहीं लेना चाहती, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकती हूं, क्या बदले में कुछ दे सकती हूं। तब वो अपनी इच्छा बताती है उन्हें कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे पति जो हैं वो आपसे आकर्षित हैं, तो कृपया करके उनको जो है आप संतुष्ट कीजिए, लेकिन वो कुष्ठ रोगी हैं। तो वो कहती है असंभव, तो लक्ष्य हीरा कहती है असंभव है ये कि ऐसा संभव नहीं है और कि मैं एक कुष्ठ रोगी के साथ जो है संग करूं। तो वो ब्राह्मणी बहुत उनसे जो है प्रार्थना करती हैं और अंत में जो लक्ष्य हीरा है वो मान जाती है, कहती ठीक है, लेकिन वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए जो है ब्राह्मण है और इससे मेरी बहुत बदनामी होगी और कुष्ठ रोगी हैं, तो रात के समय अब इस समय में लेके आना ताकि कोई देखे ना, और सुबह होने से पहले उनको यहां से वापस ले जाना, मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगी इस प्रकार से, उनको संतुष्ट कर दूंगी। तो वो कहती है ठीक है। तो वो उस कुष्ठ रोगी को, ब्राह्मण को जो है लेकर के आती है, और जब लेके आ रही होती है अंधेरे के अंदर, तो क्योंकि अंधेरा होता है पूरा और गांव में जा रही होती है, तो क्या होता है कि उनके पति जो है वो किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं, अंधेरा था तो दिखा नहीं, और जिनको ठोकर मारते हैं वास्तविक मार्कंडेय ऋषि होते हैं वो, ऐसे करके।
तो वो जो है
तो मार्कंडेय ऋषि के शरीर को अपने पैर से ठोकर मारते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि उसी समय जो है श्राप देते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये ठोकर मारी है वो सूर्योदय से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे करके। तो लक्ष्य ये जो स्त्री जब सुनती है तो उनका हृदय पूरा टूट जाता है कि मैंने इतने महीनों इस वेश्या की सेवा करी ताकि मेरे पति संतुष्ट हो सके, और जो ये है ये कह रहे हैं सूर्योदय से पहले उसकी मृत्यु हो जाए, तो उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी इस प्रकार से। तब वो क्या करती हैं, तो उनके जो पतिव्रता स्त्री की, क्योंकि वो वैश्य लक्ष्य हीरा भी बहुत प्रभावित होती हैं इस पतिव्रता स्त्री से, तो ये पतिव्रता स्त्री कहती हैं कि यदि मैंने अपने मेरे हृदय में अपने पति के अलावा मैं एक पार्ट इसके अंदर शायद कुछ मिस कर दिया है इस स्टोरी के अंदर, यानी हाँ, तो जब वो पतिव्रता स्त्री कहती हैं कि यदि मैं अपने हृदय के अंदर वास्तविकता में केवल अपने पति के अलावा किसी और को नहीं सोचा है तो सूर्योदय हो ही ना, कल सुबह सूर्य उदय ही ना हो इस प्रकार से। और गेस्ट वर्ड होता क्या है, वो पति को लेके जाती है लक्ष्य हीरा के पास, उन्हें बताती है इस प्रकार से है, और अगले दिन सूर्योदय होता नहीं है इस प्रकार से, सूर्य उदय नहीं होता उनके, और सब देवी देवता जो हैरान कि सूर्य क्यों नहीं उदय हो रहा है। और बाद में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को उन स्त्री के पास आना पड़ता है और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पति जो हैं वो बहुत लंबे दीर्घायु होंगे और साथ साथ उनका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन सूर्य का उदय होने दो, प्रकृति के नियमों में जो है बाधा मत डालिए इस प्रकार से। तो जो है इस कथा का उदाहरण देते हैं आचार्य गण, और चैतन्य महाप्रभु भी इस कथा का उदाहरण देते हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो इस प्रकार का है कि जो वो जो पति हैं वो अपनी पत्नी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इस प्रकार से, राधा किस प्रकार की इच्छा है सोची है कि नहीं, लेकिन फिर भी जो वो पत्नी है वो कभी भी अपने पति की सेवा से हटी नहीं इस प्रकार से। अभी आचार्यगण इसके लिए टीका देते हैं कि धन कमाने के लिए उस पत्नी ने क्या किया, उसने खुद एक वेश्या का कार्य करना शुरू किया इस प्रकार से, ब्राह्मणी होकर के धन एकत्रित करने के, ताकि वो लक्ष्य हीरा को संतुष्ट कर सके, और बाद में लक्ष्य हीरा की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी यहां बोल रहे पतिव्रता शिरोमणि। और उसके बाद भी जब वो जब पति संतुष्ट बारी थी उनको श्राप मिल गया इस प्रकार से, तो बहुत सारी बाधाएं हो, तो कहते राधा रानी का जो प्रेम है वो कृष्ण से इस प्रकार का है कि चाहे कृष्ण उनको ठुकरा भी दें लेकिन राधा रानी के हृदय में जो है वो कृष्ण के अलावा किसी और के की और मतलब उनके मन में किसी और चीज के बारे में अपने आप की प्रसन्नता के विषय में भी नहीं आता विषय, वो केवल कृष्ण के बारे में सोचती है। तो ये एक भक्त का जो है सरेंडर होता है, इट इज वेरी हाई स्टेज इवन कॉम्प्रिहेंड, लेकिन ये राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति इस प्रकार से, अनअलॉयड कंप्लीटली प्योर इस प्रकार से। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं वो कृष्ण की संगति में जाना चाहते हैं जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी या वृंदावन के वासी इस प्रकार से। तो इससे पता लगता है कि श्रील प्रभुपाद कौन है वास्तविकता के अंदर, वो कोई वैकुंठवासी भी नहीं है, जिस प्रकार अभी प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस के दिन भक्ति माधव गोविंद महाराज जी बोल रहे थे कि प्रभुपाद जो हैं उस शुद्ध वृंदा ब्रज के वासी हैं वास्तविकता के अंदर, और हम सबको वहां ले जाने के लिए आए हैं इस प्रकार से। तो जो एक शुद्ध भक्त होता है उसकी डिटर्मिनेशन होती है, और हम सब भक्तों के लिए शिला प्रभुपाद हमारे पास विशेष कृपा है कि हमें शिला प्रभुपाद जी का जो है आश्रय सानिध्य प्राप्त हुआ है जो कि उसी वृंदावन के वासी हैं। और यहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम प्रभुपाद बहुत फिलोसॉफिकली भी बहुत कम शब्दों के अंदर, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का मतलब होता है स्पीक लेस कन्वे मोर, अब कम बोलिए लेकिन अधिक बताइए लोगों को। तो प्रभुपाद जी जो उनके तात्पर्य हैं बहुत ही सटीक लिखे होते हैं। तो प्रभुपाद जी एक ही लाइन लिखी है यहाँ पे कि जिस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी, गोपियां, कृष्ण के पिता तथा माता, कृष्ण के सखा तथा उनके दास रहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन के अंदर सभी प्रकार के जो रस है कृष्ण के साथ उनका वर्णन किया गया है, उनका वर्णन किया है। और श्री रूप गोस्वामी जो है तो अपने उपदेशामृत के श्लोक नंबर 8 में भी यही बताते हैं इस प्रकार से, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुगामी जन तदनुरागी जनानुगामी काले नयद अखिलमित्युपदेश सारम। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उसे भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से आसक्त हैं। तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक भक्त को जो है 24 घंटे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए, अपने मन को उनमें लगाना चाहिए, रूप गोस्वामी बता रहे हैं, और ब्रज में वास करना चाहिए और भगवान के प्रिय भक्तों का जो जो जिनका अनुराग है भक्तों में, जो भक्ति प्रगाढ़ता से आसक्त हैं उनके प्रति आसक्त, उनके उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी सलाह देते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि में या वृंदावन की भूमि 84 कोश के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। एक कोश 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब कोई वृंदावन को अपना आवास बनाए तो उसे किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो प्रभुपाद बहुत एनकरेज करते हैं तात्पर्य के अंदर कि भक्त को जो है वृंदावन जाके वास करना चाहिए, लेकिन वृंदावन में जाके किसी सम उन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को केवल कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में सदैव सोचना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त कृष्ण के भक्त वृंदावन को जाते हैं, ये प्रभुपाद के व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है उन्होंने आचार्य की टीकाओं जैसा विष्णुनाथ ठाकुर की टीकाओं से भी लिखा हो, लेकिन प्रभुपाद हम सबको चाहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद ने केवल अपने किताबों में ABCD दिया गया है ऐसे करके, दिस परपोर्ट इससे पता लगता है कि प्रभुपाद ने ABC नहीं दिया ऐसे करके। बिल्कुल टॉप मोस्ट जो एक भक्त की गौड़ीय वैष्णव की एस्पिरेशन हो सकती है, प्रभुपाद एज इट इज जो है वो हम सबको प्रदान कर रहे हैं कि भक्त जो है कृष्ण के साथ निवास करना चाहता है गोलोक वृंदावन के अंदर। लेकिन किस प्रकार से हम अपने आप को इस गोकुल वृंदावन, जो भौम वृंदावन है, जो अधिक कृपालु है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में तो हम केवल आध्यात्मिक शरीर के साथ ही रह सकते हैं, लेकिन भौम वृंदावन में भौतिक शरीर के साथ भी जा सकते हैं ऐसे करके। तो उस प्रकार से जो भौम वृंदावन है, गोकुल वृंदावन है, ये अधिक कृपालु है, तो वहां पर कैसे रहना चाहिए? तो भक्ति सामर सिंधु में व्याख्या की गई है, कृष्ण स्मरण जनम चास्य प्रेष्टम निज समीहितम ततस्कता रतस्चासौ कुर्यात् वासं व्रजे सदा। भक्त को सदैव व्रज के दिव्य धाम में निवास करना चाहिए और सदैव श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ प्रदर्शन में निर्देशन में प्रविष्ट होकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए उत्कट इच्छा प्राप्त कर सकता है। और फिर रूप गोस्वामी भक्ति सामर्थ्य सिंधु में आके बता रहे हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारत। हम ब्रज के दिव्य धाम में परमेश्वर को मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों किसी भावना से करना चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसे पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है कि भक्त को किसी जो है व्रजवासी के अंतर्गत होकर सेवा करनी चाहिए। और हम लोगों के लिए व्रजवासी कौन है वो वास्तविकता में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी हैं जिनके अंतर्गत होकर हम सभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे मन में कोई स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए उसके लिए। लेकिन प्रभुपाद आगे जो है चैतन्य चरितामृत से कोट कर रहे हैं, बहुत ध्यान पर सुनेगा, बहुत सुंदर ये पैराग्राफ है। चैतन्य चरितामृत में नवदीक्षितों को यह सलाह है कि सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दी जाएं। शुद्ध भक्तों को नहीं, किनको? नियोफाइट डिवोटीज को, नवदीक्षितों को, कि सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दी जाएं और शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान की नियमित भक्ति में लगा जाए, अर्थात भक्ति डिवोशन इन रेगुलेटिव स्टेज अकाउंट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुणों आदि के लिए आसक्ति उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसी आसक्ति विकसित हो जाने पर वह विधि निषेधों का पालन किए बिना ही कृष्ण के चरण कमलों की तत्काल सेवा कर सकता है। यह राग भक्ति कहलाती है। तो लेकिन जब तक उसे आसक्ति न हो तब तक उसे साधना वैदिक साधना भक्ति का पूरा पालन करना चाहिए। इस अवस्था में भक्त वृंदावन के में कृष्ण के किसी नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकते हैं। यह रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति शांत रस से में ही संपन्न रागानुगा भक्ति शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को कृष्ण के गौओं के समान या लकुटी या कृष्ण के हाथ की वंशी के समान या कृष्ण में गले में पड़ी माला के समान बनने की आकांक्षा करता है, तो यही जो प्रभुपाद हर रस में बता रहे हैं। कई बार एक और मिसकंसेप्शन होता है कि हम सबको जो क्या है मंजरी बनना है ऐसे करके। फिर जो प्रबोधन सर सिंह महाराज बता रहे थे कि सारे मंजरी बन जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपगेट करते हैं कि हम मंजरी बना देंगे, तो बोले कृष्ण के लिए बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी इसके लिए ऐसा करके। सारे ही मंजरी अगर बन जाएंगे तो कृष्ण के लिए भोलोक वृंदावन में बहुत अधिक जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे प्रबोधन लिख रहे हैं कि हर प्रकार के रसों से जो है गोलोक वृंदावन में भक्त जा सकते हैं। दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्ह का अनुसरण कमल कर सकता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसा मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद, महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता माधुर्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या ललिता या तथा उनकी अन्य सखियों मंजरियों यथा रूप तथा रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेशों का सार यही है। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो है इस श्लोक के अंदर हम सबके लिए एक विशेष, हालांकि अभी हम कुछ श्लोकों बाद ही पढ़ेंगे, वृत्रासुर भी वैकुंठी जाते हैं संकर्षण भगवान के लोग, लेकिन हम सबको प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य के थ्रू श्रीला गोलोक वृंदावन लेके जा रहे हैं कृष्ण के साथ में इस प्रकार से। तो वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में अंतर क्या है? वैदिक भक्ति का अंतर यह है कि हम जो है जैसा गुरु ने शास्त्रों गुरु साधु शास्त्र के आदेशों का पालन करें, और रागानुगा भक्ति क्या है? उनके आदेश के बिना ही हम उसका पालन करें ऐसे करके। बस इतना ही अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है कि बिना आदेश किए ही हम उसका पालन करें ऐसे करके। और हमारी स्टेज क्या है? अभी तो वैदिक साधना भक्ति भी नहीं है ऐसे करके, उससे भी कनिष्ठ स्तर है कि गुरु साधु शास्त्र बोलते रहते हैं फिर भी हम मानते नहीं उसे। तभी कई बार इधर गोपाल कृष्ण महाराज आते हैं तो बोलते हैं हम लोग क्या है, एक ही उपदेश बार बार बताना पड़ता है क्योंकि हम लोग सब बहुत ढीठ हैं। तो कि हम लोग बहुत ढीठ हैं इसीलिए एक उपदेश को बार बार जो है दोहराना पड़ता है ऐसे करके। तो अभी उस प्रकार देखा जाए तो हम वैदिक साधना भक्ति भी सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। वैदिक साधना भक्ति का मतलब क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं एज इफ इन मिलिट्री डिसिप्लिन, शास्त्रों का आदेश है करना ही करना है। जैसे भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य के अंदर, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूतवा युद्ध स्वविकुता जुरा। अपन लिखे दिस इज द एसेंस ऑफ भगवद्गीता, दिस श्लोक इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ भगवद्गीता। और प्रॉपर एक लाइन लिखते हैं उसके अंदर, अर्जुन डिड नॉट हैव टू कंसीडर कृष्णाज ऑर्डर, ही सिंपली हैव टू एग्जीक्यूट इज ऑर्डर। कि अर्जुन जो है उसके ऑप्शन नहीं था कृष्ण के आदेश के बारे में सोचने के लिए, अर्जुन केवल उसको जो है पूरा करना था भगवान के जो आदेश था। तो ऐसे वैदिक साधना भक्ति का स्तर जो है हमें जानना चाहिए वो ये है कि हमें उस साधना भक्ति को फॉलो करना ही है, सोचना नहीं करें कि नहीं करें। और इसलिए इस उपदेशामृत के पहले दो पैराग्राफ के अंदर इस श्लोक के प्रपात बता रहे किस प्रकार व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को, मन को, वाणी को जो है भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए इस प्रकार से। अब इसमें बड़ी बात यह है, हम सब साधक भक्तों को अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत में क्यों आए ऐसे करके। वी केम टू कृष्ण कॉन्शियस, भक्ति बृहद भागवत महाराज ये स्टेटमेंट बोल रहे थे, वी हैव कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस बिकॉज रेस्ट ऑल अदर फैसिलिटीज आर अवेलेबल एल्सवेयर ऐसे करिए। कि हम इस मूवमेंट में आए कृष्ण भावना भावित बनने के लिए ऐसे करके, क्योंकि बाकी सारी सुविधाएं तो सब जगह उपलब्ध है ही है। अगर अच्छा खाना है, मान लीजिए किसी को अच्छा व्यंजन खाना है, तो उधर से बाहर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स उपलब्ध हैं। हो सकता है कि एक टेस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है जो प्रसाद हम खाएं शायद उतना डिलीशियस ना हो जितना अलग अलग रेस्टोरेंट के अंदर कुसिन्स का हो सकता है। हालांकि प्रसाद में जो संतोष है वो किसी में नहीं होने वाला, लेकिन खाली टेस्ट की मात्रा से अगर देखा जाए, अगर जीभा की संतुष्टि की मात्रा से देखा जाए, तो हो सकता है कि प्रसाद उतना जो है स्वादिष्ट ना हो। ऐसे करके हो सकता है हम इसलिए आकर्षक हो कि इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर, इस्कॉन में बहुत सारा धन है। ऐसे करके कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि जो है इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी है, उसके हर विदेशों में जो है केंद्र है। कई बार बहुत लोग इसे ज्वाइन भी करते हैं कि धीरे धीरे मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मैं इंटरनेशनल प्रीचर बन जाऊंगा, ऐसा करके ना। तो अगर ऐसा करना है तो बहुत सारी कंपनी है जिसमें आप इस पद पर प्रमोट हो सकते हैं, आप बड़े बड़े पद पर जा सकते हैं, यू कैन बिकम जनरल मैनेजर, सीईओ इत्यादि, ऐसे करके। तो वो सब तो बाहर भी अवेलेबल है ऐसे करके कि और भी यदि हम बहुत सारी चीजें हम जो है हमारे अंदर इच्छाएं हो सकती है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, पर हम यहां आए वास्तविकता में ये वृंदावन का वासी बनने के लिए, जो है ब्रजवासी बनने के लिए, जो कृष्ण के सानिध्य में चाहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी भक्ति की एक परिभाषा बताते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू सर्व कृष्णा बाय मेंटेनिंग ए लॉन्गिंग टू सी कृष्णा फेस टू फेस। कि हम कृष्ण की सेवा करें तो हमारे हृदय में ये प्रकारता जरूर होनी चाहिए। हो सकता है इस स्टेटमेंट को ये बोले कि यह बहुत ही सहजीय भाव है, ये चीप है, लेकिन इस भावना से हम सेवा करें कि एक ना एक दिन हम कृष्ण के साथ जरूर मिलेंगे इस प्रकार से। और दिस शुड इम्पेल, दिस शुड इंस्पायर अ डिवोटी टू सर्व हिम एवरी डे विद मोर एंड मोर विगर, कि मेरे को कृष्ण के नजदीक जाना है इस प्रकार से। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आराम से सोता रहूं या शेख चिल्ली का ख्याली बुलाव बनाता रहूं और अपने आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अपने आप ही जय पृथ्वी त्याचा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है, मन अपने आप हो जाएगा। ऐसे करके जो है हम अपने आराम से एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर या रूम के अंदर बैठे रहें और प्रचार तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके हमने सब सेट कर दिया है, अब प्रचार ऑटोमेटिकली होते रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे करके तो और इसीलिए वो जो आध्यात्मिक आनंद है कृष्ण की सेवा के अंदर, और खासकर कृष्ण से विरह में जो सेवा में आनंद है, वो कृष्ण के साथ रहने के आनंद से भी हायर है। और ये विप्रलंब सेवा का जो भाव है, ये जो है हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म की विशेष भेंट है हम सबको। ऐसे करके इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने जो है एक शिष्य को नाम दिया, क्या नाम दिया, भवानंद दास। ऐसे करके अभी वो मायापुर के अंदर प्रभु जी हैं, भवानंद प्रभु। तो जब उन्होंने दीक्षा दिया तो उन्होंने नाम पूछा, प्रत्येक का अर्थ पूछा, प्रभु भवानंद का अर्थ को समझ नहीं आया कि इस भव सागर में कौन सा आनंद हो सकता है इस भव लोक के अंदर। ऐसे करके फिर तो असत अचित निरानंद है हमेशा सुनते आए हैं, तो इस नाम का कुछ अर्थ समझ नहीं आया ऐसे करके, है कि नहीं। मान लीजिए कृष्णानंद, श्यामानंद, रामानंद, इस प्रकार से कोई नाम देते तो समझ में आता था ऐसे करके, लेकिन ये भवानंद कैसा नाम है ऐसे करके। तो प्रभुपाद जी ने टीका दी कि भवानंद वो आनंद की बात है जो केवल इस भौतिक जगत में प्राप्त हो सकता है, वो इवन गोलोक वृंदावन में भी प्राप्त नहीं है। तो सब भक्त और आश्चर्यचकित हो गए, दैट ब्लिस इज ऑफ प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज इन गोलोक वृंदावन यू डोंट नीड टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीबडी इज कृष्णा कॉन्शियस ऑटोमेटिकली। गोलोक वृंदावन में आपको प्रचार करने की, वैकुंठ जगत में कृष्ण भावना का प्रचार करने की आवश्यकता थोड़ी है। पता लगे वहां पर रेड लाइट्स और भक्त लोग हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वहां पे जाके, ऐसे करके क्या कृष्ण के भक्त बनो या मायावाद सिद्धांत का खंडन कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। वहां पे स्वतः सब कृष्ण भावना भावित है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भव लोक के अंदर कौन सा आनंद है, वो है ये द नेक्टर ऑफ प्रीचिंग। इस प्रकार से कि कृष्ण भावना का असली आनंद है जब हम इस प्रचार की भावना को गौड़ीय को मेंटेन करते हुए प्रचार अपने अपनी अपनी क्षमता अनुसार इस प्रचार के आंदोलन में जब जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से जो है हम श्री प्रभुपाद जी जो वास्तविकता में ब्रजवासी हैं उनकी कृपा से हम कृष्ण का सानिध्य निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। और हम देखते भी हमारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनकी गति भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो चाहे जीवन पर्यंत जो है साइंटिस्ट को प्रीचिंग करते हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे हो, लेकिन जीवन के अंत के अंदर जो है किस प्रकार से उन्हें कृष्ण की अनुभूति प्राप्त हुई, चाहे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज हो, भक्ति तीर्थ महाराज हो, या भी रिसेंटली हमें एक भक्त ने पता नहीं किनका नाम बताया था जिनके मायापुर में वो पूरा लाइफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ऐसे करके, और रिसेंटली उन्होंने जो है 2010 के अंदर शरीर छोड़ा मायापुर में, उनका नाम हाँ व्हाट इज द नेम, निर्गुण प्रभु ऐसे करके। तो उन्होंने शायद कोई पुस्तक भी लिखा है, निर्गुण प्रभु ने कोई पुस्तक भी ऐसा लिखा कुछ, तो वो बता रहे थे। तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी बहुत से शिष्यों को देखते हैं ऐसे करके। और वो आनंद क्या है, उस आनंद का एक छोटा सा पास्ट टाइम बताते हैं। प्रभुपाद जी हांगकांग के अंदर थे और हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु और दो तीन भक्त और थे प्रभुपाद जी के साथ। उस समय भानु महाराज भानु प्रभु थे और स्वरूप सत्स्वरूप महाराज थे और एक दो भक्त और थे। और तब जो है हांगकांग के अंदर एक बहुत छोटे से अपार्टमेंट के अंदर सब भक्त प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे और बहुत मुश्किल था हमारा प्रचार करना। और भूरीजन प्रभु और जगत तारिणी माता जी को 2 साल तक प्रचार करते लेकिन कोई खास सफलता मिल नहीं रही थी। और वहां इंडियन कम्युनिटी और जो चाइनीज लोग भी हांगकांग में बहुत सारे थे, तो जो इंडियन लोग थे वो केवल पैसा कमाने के लिए वहां पे रहते थे, उनका एक ही लक्ष्य था ऐसे करके। और पूरा हॉजपॉज था वहां पे। तो वहां पे जब प्रभुपाद जी का कार्यक्रम स्थित किया, जब आयोजन किया गया, तो उस अपार्टमेंट के जो जो ओनर थे इस प्रकार से, तो उन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, कई सारे हिंदू फैमिली को बुलाया था। लेकिन वहां पे प्रभुपाद के साथ एक वो सिद्धांत एक वो भी करने, क्या बोलते हैं, एक मायावादी सन्यासी भी बोलने वाले थे उस रात में। तो जब पता लगा शिष्यों को कि ऐसा है, तो उनको लगा कि कैसे होगा ऐसे करके। और प्रभुपाद तो मायावाद के खिलाफ मतलब सुन ही नहीं सकते थे, ऐसा होता था। और वो सन्यासी प्रभुपाद के सामने बोलेंगे ऐसे करके, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है देखी जाएगी जो भी होगा, कृष्णा विल डिसाइड ऐसे करके। और उनको लगा था हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो फिर भक्तों ने कुछ कुछ योजना बनाई कि क्या करेंगे, और एक और जो है उनसे 10,000 येन लिए प्रभुपाद की माला के लिए। और उन्होंने क्या क्या किया जाए, तो जो ओनर थे उन्होंने बोला कि नहीं, जो ये गुरु आएंगे बहुत फेमस हैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर, तो और जब मिलने आए प्रभुपाद से तो प्रभुपाद ने तुरंत उनको स्मैश किया, बोले व्हाट इज दिस हिंदू ऐसे करके। बहुत मतलब प्रभुपाद पहली मीटिंग के अंदर ही 3 लोग आए थे प्रभुपाद से मिलने, और प्रभुपाद जो है उन्होंने बोला कि हिंदू कम्युनिटी, और बोले ये हिंदू क्या होता है, हिंदू कौन से किसी वैदिक शास्त्र के अंदर नहीं है, हिंदू तो मुसलमानों ने बनाए, ये सिंधी वो सिंधु नदी थी इसके कारण, इसलिए। तो कहते प्रभुपाद आई डोंट नो, देयरफॉर यू हैव टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर, तुम्हें जो है एक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रभुपाद खींच के उनको डांटने लगे ऐसे करके। तो फाइनली जाने लगे तो भक्तों ने कहा कि हमें जो है एक माला बनानी है प्रभुपाद जी के लिए, तो आप जो है पैसा दो। बोला कितना चाहिए, तो उन्होंने 100 येन या ऐसा कुछ दिए। तो उन्होंने बोला 100 येन में कोई माला नहीं बनने वाली, फूल बहुत महंगे हैं हांगकांग के अंदर, वैसे ही फूल होते नहीं वहां पे। तो उन्होंने बोला कितने चाहिए, बोला तो उन्होंने बोला 10,000 येन ऐसे करके, तो सीधा तो ऐसे करके। तो उन्होंने कहा ठीक है 10,000 येन ये लो, लेकिन उन सन्यासी के लिए माला बनाना। तो इन भक्तों ने सोचा कि प्रभुपाद के लिए आसन जो है डेकोरेट करेंगे, बहुत सुंदर माला बनाएंगे ऐसे करके, और 10,000 येन में तो होने वाला नहीं है ये ऐसे करके। तो उन्होंने आइडिया निकाला क्या करेंगे, प्रभुपाद जी एक दिन पुरानी जो माला है वो उस मायावती सन्यासी को पहना देंगे, पूरे 10,000 येन से प्रभुपाद जी की माला बनाएंगे ऐसे करके। उन्होंने यही किया, और वो सन्यासी हिंदी जानते नहीं, इंग्लिश जानते नहीं, तो हिंदी में बोलने वाले थे, और प्रभुपाद जी के शिष्य हिंदी जानते नहीं थे, तो एक प्रभुपाद ही थे जो केवल हिंदी जानते थे ऐसे करके, या वहां के हिंदी कम्युनिटी के लोग थे। तो प्रभुपाद से बोला कि हमारी कम्युनिटी हिंदी इंग्लिश दोनों जानती है, आप हिंदी में या इंग्लिश भाषा दोनों प्रवचन दे सकते हो। तो उन्होंने बोला माई डिसाइपल्स डोंट नो हिंदी, देयरफॉर आई स्पीक इन इंग्लिश, कि मेरे जो शिष्य हैं वो हिंदी जानते नहीं है, इसलिए मैं जो इंग्लिश भाषा प्रवचन दूंगा। और फिर प्रभुपाद को जिस टाइम पे बोला था प्रभुपाद टाइम पे पहुंचे नहीं, जल्दी प्रभुपाद टाइम पे पहुंच जाते लेकिन जानबूझ के शिष्य टाइम पे पहुंचे नहीं, पहले वो सन्यासी आए। और वहां 2 कुर्सी रखी थी, तो वो जो शिष्य थे वो जो सन्यासी थे उनको तो बिठा दिया कुर्सी के अंदर। और प्रभुपाद के थोड़े से आने से पहले वो शिष्यों ने जो भूरीजन प्रभु और एक और जो डिवोटी थे साथ में, उन्होंने कहा प्रभुपाद थोड़ी इस कुर्सी पर बैठेंगे ऐसे करके, प्रभुपाद के लिए व्यासासन अरेंज करो ऐसे करके। तो प्रभुपाद सच अ बिग गुरु, ही कैनॉट सिट ऑन दिस ऑर्डिनरी चेयर, यू नो लाइक दैट, ही हैज टू सिट ऑन व्यासासन। तो वो परेशान हो गए वो बिल्कुल कि ये शिष्य लोग कर क्या रहे हैं। तो बोला ऑल राइट, बोथ द स्पीकर्स कैन सिट ऑन व्यासासन एंड देन स्पीक। तो लेकिन उसके बाद प्रभुपाद आए, और जो है प्रभुपाद ने इंग्लिश में पहले कीर्तन शुरू किया, 15 मिनट कीर्तन किया, और लोगों ने कुछ ज्यादा रिपीट नहीं किया। और फिर प्रभुपाद जो है कीर्तन वहां बैठ के जो है व्यासासन बैठ के लेक्चर दिया, अविनाशी तद्विद्धि, ये जो 2.17 श्लोक है, ये अविनाशी तद्विद्धि ये सर्वमिदम ततम, इस प्रकार से। तो ये श्लोक पे प्रभुपाद लेक्चर देने लगे, और खूब मायावाद फिलोसॉफी को लेफ्ट एंड राइट, बिल्कुल दिस इज चीटर फिलोसॉफी, दिस इज एथिस्टिक फिलोसॉफी, दिस हैज स्पॉइल्ड द होल वर्ल्ड, इसने पूरे जगत का नाश कर दिया इस मायावाद फिलोसॉफी ने। खूब जो है बिल्कुल प्रभुपाद ने इस मायावाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया, फिर खंडन किया। और वो गुरु सुन रहे थे, खैर उनको तो इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन सब कम्युनिटी सुन रही थी इस प्रकार से। और उसके बाद जो है और इस प्रकार से प्रभुपाद ने मायावाद सिद्धांत को पूरा स्मैश किया, उन गुरु को भी पूरा स्मैश किया इस प्रकार से, और फिर प्रभुपाद का स्पीच समाप्त हो गया। और फिर उस ओनर ने बोला कि जो मालिक थे उन्होंने बोला कि भाई अब उनको बोलो, नहीं प्रभुपाद व्यासन से हटे ही नहीं ऐसे करके, प्रभुपाद बैठे रहे वहां पे। तो उन सन्यासी को अपनी चेयर में जाकर फिर बोलना पड़ा ऐसे करके, वो उठ करके आए, ओनर ने बुलाया लेकिन प्रभुपाद शिष्य और प्रभुपाद जी वहीं बैठे रहे व्यास आसन में, और वो जाके उसी कुर्सी में बोलने लगे और शिष्यों को लगा प्रभुपाद चले जाएंगे यहां से, लेकिन प्रभुपाद आधे घंटे तो सुनते रहे। और फीडबैक में उनका हाथ था प्रभुपाद, बहुत गंभीर था, पर जब भी कर रहे थे सुन भी रहे थे, बहुत गंभीर थे, बहुत ही गंभीर। और शिष्यों ने देखा प्रभुपाद क्या करें, तो सब शिष्य भी जब करने लग गए, उन्होंने बोला भी उनको समझ आ नहीं रहा था ऐसे करके। और आधे घंटे बाद तुरंत प्रभुपाद जो है एकदम से बरस पड़े, बोले स्टॉप दिस नॉनसेंस ऐसे करके चिल्लाने लगे प्रभुपाद बहुत जोर से एकदम, उसको बंद करो ऐसे करके, और शिष्य को आदेश दिया कीर्तन चालू करो ऐसे करके। और वो लेक्चर उन्होंने बीच में ही, और वो स्वामी जी ने प्रणाम बोला नमस्कार किया, लेक्चर बंद किया, शिष्य ने तुरंत कीर्तन चालू कर दिया उसके अंदर ऐसे करके। और फिर उसका कीर्तन हुआ और फिर स्वामी जी चले गए, और भक्तों ने फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया वहां पे, बुक्स लगाए थे, और प्रभुपाद को लेके एक डिवोटी जो है अपने अपार्टमेंट में चले गए। और फिर जो है प्रभुपाद ने फिर, और फिर दोनों शिष्य वापस आए तो प्रभुपाद से पूछा कहाँ गए वो दोनों, तो कहने अभी वहां बुक्स टेबल लगाया है तो अगर बुक जाएंगे तो। और इसके बाद वो दोनों आते हैं और साथ में वो मिस्टर महेश जो ओनर थे वो आते हैं साथ के अंदर, बहुत गुस्सा होते हैं वो ओनर, कहते स्वामी जी व्हाई डिड यू डू दैट, और प्रभुपाद जो है उनको और खिंचा करके जो डांटने लगे ऐसे करके। और वो कहते ओके देन माई टेम्पल इज नॉट फॉर योर प्रीचिंग पर्पज लाइक दैट। तो जब वो चले गए फिर ऐसे गुस्सा होकर प्रभुपाद कहते ही वॉज टू अटैच टू इज अपार्टमेंट, कि अपने अपार्टमेंट से बहुत आसक्ता, हमें देना वैसे नहीं चाहता था, लेकिन उसको बहुत सालों बाद जो मेरी डांट है ये याद रहेगी, दिस रास्कल यू नो ही विल ऑलवेज रिमेंबर द चेस्टाइजमेंट वी हैव गिवन टू हिम। और सब भक्त बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने पूछा, और प्रभुपाद जी हंसने लगे ऐसे करके, और पूछा प्रभुपाद जी आधे घंटे तक आप सुन रहे थे, अचानक से क्या हुआ जो आप इतने जोर से बरस पड़े? और तो वो बताते हैं कि पहले तो जो बोल रहा था ठीक ठीक बोल रहा था ऐसे करके, इसका प्रचार था ठीक 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 था, मैं सुन रहा था ऐसे करके, लेकिन फिर जब ये मूल जलूल मायावाद बोलने लगा जब, तो मैं कैसे सहन कर सकता हूं, यू नो मैं भक्तिधाम सड़क का शिष्य हूं, रूपानों का विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वान था हारने, तो हाउ कैन आई टॉलरेट दैट, दिस आर द ब्लास्फेमी, मैं सहन नहीं कर सकता, सो आई हैव टू चैलेंज एंड फाइट ऐसे करके। तो प्रभुपाद पब्लिक के अंदर जो इस प्रकार से करके, तो दैट इज द नेक्टर ऑफ प्रीचिंग। और फिर प्रभुपाद कहते हैं आई हैव कम टू, दिस इज माई जस्ट लाइक इन ओल्ड एज स्वामी इज रिटायर, बट आई हैव कम टू ट्रेन ऑल ऑफ यू एंड प्रीच टू द होल वर्ल्ड एंड सेव द होल वर्ल्ड। प्रभुपाद कहते हैं जय प्रभुपाद, एंड देन दिस पास्ट टाइम हैपन। तो ये है नेक्टर ऑफ प्रीचिंग, इस प्रकार से जो है उसमें बहुत तरीके के लोग हमको मिल सकते हैं। इसलिए भक्त जो है जब कृष्ण महानामृत सिद्धांत से अवगत होंगे तभी वो इस प्रकार से जो पूरे जगत का विनाश कर रहे हैं मायावाद सिद्धांत, ये एथिस्टिक लोग, ये नास्तिक लोग, और ये टेक्नोलॉजी के नाम पे, हो सकता है हम में से कई भक्त भी जो है बहुत अधिक आकर्षित हों, जो ये अभी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे खोला है लोगों ने, बहुत हम लोगों को लगा कि कितनी तरक्की की है इस प्रकार से। वास्तविक तो मैं आसुरी सभ्यता है ये, तो बिल्कुल राक्षसी कार्य है इस प्रकार के कार्य करना। हमें तो बहुत लोगों को लगा बहुत आसान हो गया शायद वृंदावन जाना इस प्रकार से करके, और हमें बहुत खुशी होगी कि हम 100 या 120 की स्पीड में जो है बिना चेंज किए गाड़ी चला सकते हैं, बिना साइड चेंज किए। पर किस प्रकार से वो जो है सारे कृषि को जो है सत्यानाश कर रहे हैं ये वैज्ञानिक लोग, और आगे जो है इनका क्या प्लान है आपको मालूम है? अभी आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाएंगे ऐसे करके, यमुना एक्सप्रेस वे। और इतने आसुरिक सभ्यता है, उनका सिद्धांत है गंगा एक्सप्रेस वे बनाने के लिए पूरा। तो हो सकता है हम लोगों को लगे कि समाज तरक्की कर रहा है, पर यदि हम प्रॉपर सिद्धांत को जानेंगे तो हमारा खून खोलना चाहिए कि कितनी आवश्यकता है ये कृष्ण भावना प्रचार करने के लिए ऐसे करके। जो है इतना अधिक कृषि और यमुना का जल और गंगा का जल जो है नाश कर रहे हैं इस प्रकार से, और वहां पे जहां हमें हर जगह देखे, चाहे यमुनानगर में हो चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर हो, सरकार अनुमति नहीं देती कि मंदिर बनाइए, लेकिन इस यमुना एक्सप्रेस के बाजू में आपको मालूम है आगे क्या बनने वाला है? अभी तो सबको खेत खलियान दिख रहे होंगे, लेकिन आने वाले कुछ समय के अंदर क्या दिखेगा आपको? सिर्फ बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ऐसे करके, हजार हजार सौ सौ एकड़ जमीनें वहां पे विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस इत्यादि कंपनी को सब दे चुके हैं, जितने खेत हैं, गायें हैं, सब वहां पे समाप्त हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल राक्षसी कार्य है जो समाज कर रहा है। हो सकता है हमको लगे कि बहुत तरक्की हो रही है इस प्रकार से, लेकिन तो हमें जानना चाहिए वास्तविकता के अंदर कि ये पूरा समाज जो है नरक की ओर जा रहा है, हेलिश सिविलाइजेशन वास्तविकता के अंदर। और प्रभुपाद कहते हैं दैट विल बी डूम्ड, द सिविलाइजेशन विल बी डूम्ड। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, तो हमारी यही इच्छा होनी चाहिए कि वृत्रासुर के प्रसंग से कि हमारे भी एक ही इच्छा हो कि भगवदाम वापिस जाए। बिना सर बस हम कॉमेंट वन कमेंट
जैसे अभी और आज दिन भी समाव बाहर ऐसा ही है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे, एंड यू गेव अस अ न्यूज कि पूरा देश का जो है पूरा सारा फर्टाइल बेल्ट जो है बेच दिया है, और एंड टॉकिंग अबाउट लिबरेशन यहाँ पे लाइक बिकॉज लाइक एस भगवत हम जा रहे हैं ऑन हिज वे। सो हाउ टू सी दिस इज इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, लाइक व्हाट इज अराउंड अस, और जो ये हमारा गोल है और जो हम मना रहे हैं, जहां हम जी रहे हैं,
जो हम मना रहे हैं मीन्स
नहीं जो बाहर मना रहे हैं, मतलब हम ही मना रहे हैं जैसे भी। सो टू एनी लाइक आई लाइक टू कमेंट ऑन दिस।
प्रभु जी का तो प्रश्न या टिप्पणी कह सकते हैं कि जैसे बाहर के लोग जब ये गोल बना रहे हैं जो सिविलाइजेशन का इस प्रकार से सो कॉल्ड सिविलाइजेशन तो किसी भी एंगल से नहीं है ये इस प्रकार से। बड़े आश्चर्य की बात है, आज भारत स्वतंत्रता दिवस होगा लेकिन कई कंपनी आज के दिन में छुट्टी नहीं देती, जितनी एमएनसीज हैं वो आज भी वो अमेरिका इंडिपेंडेंस डे मनाती है ऐसे करके, 4th of July ऐसे करके, 4 जुलाई को उनकी छुट्टी होती है। ये हमारे मतलब सो कॉल्ड भारत की स्थिति है इस प्रकार से, आज भी कई एमएनसीज की छुट्टी नहीं है इस प्रकार से। तो हम नहीं चाहते वैसे गुलाम बन गए हैं इस प्रकार से। और अखबार में वैसे लिख रहे थे ऐसा लगता है मानो भारत में नहीं कि यूरोप और अमेरिका में आ गए हों, ऐसा लगता है जब उस एक्स। तो एनी हाउ एटलीस्ट माई अंडरस्टैंडिंग इज कि हम श्रील प्रभुपाद के अनुगामी हैं, तो हमें जानना चाहिए कि ये गॉडलेस सिविलाइजेशन बहुत बेकार है और इसका पर्दाफाश हमें करना चाहिए, और साथ में भक्तों के संग में रहते हुए प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन पढ़ते हुए सिद्धांत की चर्चा करनी चाहिए, और ये चर्चा करनी चाहिए किस प्रकार हम समाज की रक्षा कर सकते हैं वास्तविकता के अंदर। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभुपाद जी के जो मिशन था उसी मिशन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें, और वो प्रभुपाद जी के इन क्या बोलते हैं प्रभुपाद कहते थे मिलिट्री बेसिस, दिस टेम्पल्स आर सपोज टू मिलिट्री बेसिस वेयर मेनी मेनी सोल्जर्स कैन बी ट्रेंड यू नो एंड देन गो आउट एंड थ्रो दीज बॉम्ब्स इन द फॉर्म ऑफ प्रभुपाद बुक्स। तो हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को जो है इस आसुरी सभ्यता से निकालकर जो वास्तविक सभ्यता है, जो वास्तविक जीवन है, जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ, वो लोगों को जो है दें, विशेषकर प्रभुपाद जी की पुस्तकों में जो लिखा हम पढ़े और बांटे, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, दैट विल लिबरेट अस, वो वास्तविकता में इंडिपेंडेंस है वास्तविक इस प्रकार से देखा जाए तो। कृष्ण के साथ असली जीवन हमारा जीवन है, ये तो अभी जो है बिल्कुल टेम्पररी है जितना हम जीवन जी रहे हैं, है ना। और हमें एस्पायर भी करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कि हम वृंदावन के अंदर प्रवेश करेंगे इस प्रकार से। ऑफकोर्स इट शुड नॉट कन्फ्यूज अस, और सहजिया नहीं बनना चाहिए, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य पास्ट टाइम कि वास्तविकता में माधुर्य से भी बड़ा क्या है औदार्य। ऐसा कहते कई भाई लोग सोचते हैं कि माधुर्य टॉप मोस्ट है, लेकिन कई सारे प्रभुपाद शिष्य बताते हैं प्रभुपाद दैट बिकॉज द पीपल इन यू नो दोज आर एस्पायर नॉट एस्पायरिंग रादर दोज आर मिसलेड बाय दिस, जो कन्फ्यूज हैं वो उनको लगता है माधुर्य सर्वश्रेष्ठ है ऐसे करके, पर वास्तव में कहना लॉर्ड चैतन्य मूड ऑफ औदार्य इज द टॉप मोस्ट इस प्रकार से ऐसे करके। तो उस औदार्य अवतार जो है चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में हम हैं, एंड देन वी गेट द टॉप मोस्ट रसा सर्व उन्नत उज्ज्वल रसा हम सब भक्ति श्री हम, तो दैट वी कैन गेट। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राशि भागवतम की पिता गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल, हरे कृष्ण। सभी भक्तों बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।